decir, आयत नंबर 36 से 40 तक, 36 से 40 तक ये आयत हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हो और हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा के वाके के सिलसिले में जो है वो नाजिल हुई, और इसमें बड़े मुख्तसिर अंदाज में इस वाके पर तबसरा किया गया है। आप बहुत ही तवज्जो से इसको सुने, और जैसे आप नोट जो लें तो इसमें जो अरबी के अल्फाज हैं इनको खास तौर पर आप देखें ताकि आप इसको समझ सकें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वमा काना लिल मुमिनिन वला मुमिनतिन, वमा काना, इसके मानी हैं और नहीं है। काना वैसे तो माजी के मानी देता है और यहाँ है के मानी में है, और नहीं है ये मोमिनिन किसी किसी मोमिन के लिए, वला मोमिनतिन और ना किसी मोमिना के लिए, किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को ये हक हासिल नहीं है, इजा कदल्लाहु व रसूलहू, के जब मुकरर कर दे अल्लाह, कदा जो है ख्वाब दुआ या अपनी बात या अमल से किसी अमर का फैसला पूरा करना, कि जब अल्लाह फैसला कर दे, जब अल्लाह मुकर्रर कर दे, व रसूल हो और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरन कोई काम, कि जब अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम का फैसला कर दे, तो मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए जो है वो उसको क्या हक हासिल नहीं है, कि अन यकूना लहुमुल खियारतु मिन अमरहिम, यकूना के हो लहुम उसके लिए खियारातु, खियारातु लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया जाता है खा या रा, और इसके मानी हैं इख्तियार के उन्हें जो है कुछ भी इख्तियार नहीं है, मिन अमरेहिम इनके किसी मामले में, यानी फिर उन्हें अपने उस मामले में खुद फैसला करने का इख्तियार नहीं है। तो यहाँ पे खियारातु, इसका रूट तो खा या राई है, इख्तियार के मानी में है कि खैर में से सही चीज जो है उसका इंतखाब करना। तो अब उनके पास अपने काम के मामले में कुछ फैसला करने का इख्तियार बाकी नहीं है, वमन यासिल्लाह व रसूलहू, और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल का नाम आए तो दुरूद पढ़ना चाहिए, आप भी दुरूद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे, फकत दल्ला दलालम मुबीना, तो पस तहकीक वो सरी गुमराही में पड़ गया। और यहाँ पर जो है यासी लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया गया है, यासी और मासियत, आपने ये लफ्ज पहले भी पढ़ा है, मासियत ये नाफरमानी के मानी में इस्तेमाल होता है, इसका रूट है ऐन स्वाद वो, ऐन स्वाद या, और मानी है नाफरमानी करना, अतात ना करना। अब आप देखिए कि यहां पर जो पहली बात नुमाया तौर पर सामने आती है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहे हैं, ये बात बता रहे हैं कि किसी मामले में अगर अल्लाह और उसका रसूल कोई फैसला कर दें तो किसी मोमिन के लिए चूं और चौरा की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक सबसे बड़ा है। ये है इस पूरी बात का निचोड़। और आप देखें कि हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हो के साथ हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा का निकाह 4 हिजरी में हुआ मगर निभा ना हो सका और अगले साल ही दोनों में अलहदगी हो गई। हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हो ने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलाक का इरादा जाहिर किया तो आपने वजह पूछी, उन्होंने कहा कि वो अपने खानदानी शर्फ की वजह से मेरे मुकाबले में बड़ाई का एहसास रखती हैं। तहम आपने उन्हें रोका और बार बार की दरखास्त पर आखिरकार आपने उन्हें अलहदगी की इजाजत दे दी। फिर आपको ये बात याद होगी कि जईद और जैनब रजी अल्लाह अन्हुमा के निकाह के वक्त ये रस्म तोड़ी गई थी कि माशरती फर्क जो है वो निकाह में हायल नहीं होना चाहिए। और आपको ये बात भी याद होगी कि हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हो ये एक गुलाम थे और वैसे थे ये एक कहते हैं कि ये अरबी नस्ल के थे यानी अरब में से थे, लेकिन पता नहीं कब इनको जो है वो किसी ने जो है वो पकड़ कर जो है वो गुलाम के तौर पर बेच दिया, तो इस तरह जो है इनकी हैसियत जो है वो एक गुलाम की हो गई। बहरहाल ये कुरैश के खानदान से नहीं थे और हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा को अपने खानदान की बर्तरी का जो है वो एहसास था और अल्लाह ताला ये चाहते थे कि पहले तो ये था कि गुलाम और एक ऊंचे खानदान की जो लड़की है तो ये रस्म तोड़ी गई कि माशरती जो ये फर्क है इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। और हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हो जो थे ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे और कदीम जाहलियत में ये रिवाज था कि मुंह बोले बेटे को बिल्कुल हकीकी बेटे की तरह समझा जाता था, उसके वही हकूक होते थे जो हकीकी बेटे को होते थे। तो अब थे तो गुलाम तो इस रस्म को तोड़ने की बेहतरीन शक्ल ये थी कि गुलाम का निकाह जो है वो ऊंचे खानदान की लड़की जो हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से थी कि उनका निकाह जो है वो उनसे कर दिया जाए। और इस सिलसिले में आप देखें कि मकसद क्या था कि गुलाम जो है उसको मुआशरे में ऊंचा मकाम दिया जाए। इस्लाम मुआशरती बिगाड़ की इस्लाह करना चाहता था और इस इस्लाह की आगाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और उनके घर से होनी चाहिए थी। अरब मुआशरे में गुलामों की कसीर तादाद थी, गुलामों को हकीर समझा जाता था, दूसरे दर्जे की मखलूक समझा जाता था और उन्हें बकरियों और भेड़ों की तरह खरीदा जाता था और बेचा जाता था। और मुआशरा इस बात के लिए तैयार नहीं था कि गुलामों को अपने अंदर जज्ब कर सके। जैसे आप देख लें कि आज भी अरब लोग जो है वो अपनी जात पर एक फख्र करते हैं और बाकी लोगों को वो अजमी समझते हैं, दूसरे दर्जे के लोग। और फिर आप यहाँ पे भी आप देख लें कि जो है वो जो दूसरी कौमें आई हुई होती हैं उनको दूसरे दर्जे की नेशन जो है वो समझा जाता है, तो जो पहले से लोग वहां पे मौजूद हैं तो वो अपने आप को जो है वो ज्यादा अहमियत देते हैं। तो हसब नसब या मुआशरे के अंदर ये जो जात पात है और या ये कौमों का जो ताल्लुक है तो इस्लाम मुआशरे में इस बिगाड़ की इस्लाह करना चाहता था। और आप देखें कि मगरिब के ममालिक में आज बहुत से ममालिक हैं जो दूसरे इलाकों से आए हुए लोगों को सिटीजनशिप देते हैं, तो ये भी क्या है कि यानी सबको बराबर पर लाकर खड़ा करते हैं, लेकिन अगर आप अंदर उसमें जाकर गहराई से इसका जायजा लेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि फिर भी यानी इस तरह जो बाहर से लोग आते हैं उनको दूसरे नंबर पे जो है वो समझा जाता है। तो बहरहाल उस जमाने में जो गुलाम थे माशरती तौर पर अरब सोसाइटी उन्हें अपने बराबर का दर्जा देने को तैयार नहीं थी, और अल्लाह ताला ये चाहते थे कि ये रस्म जो है इसको तोड़ा जाए। और इस सिलसिले में जो है वो इसका आगाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फुफोजाद बहन जैनब का रिश्ता तलब किया, किसके लिए? हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हो के लिए। और जब आपने वो रिश्ता तलब किया तो हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा और इनके रिश्तेदारों ने इस रिश्ते को कबूल करने से इनकार कर दिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हो की रवायत है, तो जवाब में हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि अना खैरम खैरु मिनहु नसबा, कि मैं उससे नसब में बेहतर हूं। और इब्ने साद का बयान है कि उन्होंने जवाब में यह कहा था कि ला अरदाहु लिनफ्सी व ना अय्यम कुरैश, कि मैं उसे अपने लिए पसंद ही नहीं करती, मैं कुरैश की शरीफ जाती हूं। और हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा ने भी जो है वो इसको नापसंद किया था, और इनके भाई थे अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह अन्हो, और उन्होंने भी जो है इस बात पर नापसंदीदगी का इजहार किया कि हमारा खानदान जो है वो माशरे में ऊंचा मकाम रखता है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि हजरत जैद से जो है वो इनका निकाह कर दिया जाए। तो ना सिर्फ हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा बल्कि उनके भाई और उनके खानदान के जो लोग थे उन्हें ये रिश्ता जो है वो रिश्ता पसंद नहीं था। तो उस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत नाजिल कर दी। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कि किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को ये हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मामले का फैसला कर दे तो फिर उसे अपने मामले में खुद फैसला करने का इख्तियार रहे। इससे क्या बात पता चलती है? तो इससे अमल के तौर पर जो उसूल सामने आता है वो ये है कि अल्लाह और रसूल का हक सबसे बड़ा है, और जब किसी मामले में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी पता चल जाए, मर्जी वाजे हो जाए, तो इसमें आदमी की अपनी मर्जी जो है वो खत्म हो जाती है। तो फिर इसके बाद किसी आदमी की अपनी कोई मर्जी जो है वो नहीं रहती। तो ये बात जो है वो पहली बात जो नुमाया होकर सामने आती है वो ये है, फरमाया कि फिर उसे अपने मामले में खुद फैसला करने का इख्तियार हासिल नहीं रहता, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा तो वो सरी गुमराही में पड़ जाएगा। तो वो शख्स क्या करेगा? वो शख्स जो है वो अल्लाह का नाफरमान होगा। तो आप भी अपना मुहासबा करें, आप अपना जायजा लें कि रोज रोजमर्रा जिंदगी के आम मामलात में और खुसूसी मामलात में कुरान क्या रहनुमाई देता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से क्या बात पता चलती है, और फिर मैं क्या करती हूं, क्या मैं अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के सामने जो है वो सरे तस्लीम खम कर देती हूँ, या फिर मैं चूं चरा करती हूँ, लेकिन क्या करूं, ये मुश्किल है, दिल ये चाहता है, हालात ऐसे हैं, जमाना ऐसा है, और यहाँ के रस्म और रवाज ऐसे हैं, और फिर लोग क्या कहेंगे, और फिर दूसरों को खुश भी तो करना है, और दोस्त, तो ये जो लेकिन है इतना लंबा करते हैं, और फिर जो सोचते हैं तो क्या करते हैं कि इतनी देर कर देते हैं कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो पसंद और नापसंद, इसका मायार जो है वो क्या है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है, और जिंदगी के तमाम मामलात में, किसी एक चीज में नहीं, زندگی کے تمام معاملات میں ایسا کرنا چاہیے. اور یہ جو آیت ہے یہ اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے, اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ یہ اسلامی قانون کا اصل الاصول ہے. یہ آیت ویسے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہ کے واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی, لیکن خصوصی موقع کے علاوہ اس کا جو حکم ہے وہ عام ہے, اور یہ اسلامی آئین کا اصل الاصول ہے, یہ اس کی بنیاد ہے, اور اس کا اطلاق پورے اسلامی نظام زندگی پر ہوتا ہے. کسی مسلمان مرد, کسی قوم, کسی ادارے, کسی عدالت, کسی پارلیمنٹ, اسلامی حکومت یا ریاست, کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں, یا جس معاملے میں یہ پتا ہو کہ قرآن میں ایسے ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا, تو اس میں کوئی اپنی آزادی رائے استعمال کرے, اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرے. تو مسلمان ہونے کے معنی ہی یہ ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے اپنی آزادانہ رائے جو ہے اس سے دستبردار ہوا جائے, اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے سامنے اپنی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. تو مسلمان ہونا اور پھر اپنے اختیار کو, فیصلے میں اپنے اختیار کو باقی رکھنا, یہ دونوں ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں. تو جو بھی مسلمان ہے اور مسلمان بن کر جینا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے جھک جائے, اور جو جھکے گا نہیں, اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کچھ اور ہے, قرآن میں اللہ کے احکامات کچھ اور ہیں, اور اپنی مرضی سے مسلمان کچھ اور کر رہا ہے یا مسلمان کر رہے ہیں, آپ کر رہی ہیں, کوئی بھی کر رہا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. بے شک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے, ڈھول پیٹے, ڈھنڈورا مچائے, اعلان کرتا پھرے, نہ مسلمانوں جیسا ہو, شکل مسلمانوں جیسی ہو, لیکن اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے. یہاں پہ یہی بات ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا. جب یہ آیت نازل ہو گئی, اسے سنتے ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے سب گھر والوں نے سر اطاعت خم کر دیا. ان کا دل نہیں مان رہا تھا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے جھکا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھایا, خود زید رضی اللہ عنہ کی طرف سے 10 دینار اور 60 درہم مہر ادا کیا, چڑھاوے کے کپڑے دیے اور کچھ سامان خوراک کے طور پر گھر کے خرچ کے لیے جو ہے وہ بھیج دیا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آیت کے نازل ہوتے ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہ, حضرت زید جو ایک غلام تھے, آزاد کردہ غلام تھے, ان سے نکاح کرنے پر تیار ہو گئی. انہوں نے پھر اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا, ان کے خاندان والے بھی. تو یہاں پہ یہ آیت نمبر 36 جو ہے اس میں یہی بات ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 37, یہاں پہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک تو یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے مزاج میں خاندانی نسب اور جو شرف تھا, جو خاندانی عظمت کا احساس تھا, وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے مزاج کے اندر تھا. دوسری طرف جو حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے, ان پر جو ہے وہ غلامی کا ایک داغ تھا, ایک دھبا تھا. تو ان میں آپس میں لڑائی رہتی تھی, ان میں آپس میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا, اور حضرت زید رضی اللہ عنہ اپنے یہ حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے رہتے تھے, بتاتے رہتے تھے. کیوں؟ پہلے وہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے, لیکن پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیات نازل ہو گئی تھی کہ بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو, تو مدینہ کی گلیوں میں وہ زید بن حارثہ کے نام سے پکارے جانے لگے. لیکن جب نکاح ہو گیا اللہ کے حکم کے مطابق کہ یہ جو خاندانی شرافت ہے یا حسب نسب ہے اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے, تو نکاح ہونے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنے جو خاندانی نسب و شرف کا احساس تھا, جو تفاخر تھا, اس کو اپنے دل سے مٹا نہ سکی, اور وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جو ہے वो सही से कबूल ना कर सके। और निभा जब इनका ना हो सका, और हजरत जैद रजी अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्सर अपने हालात का जिक्र करते रहते थे और बताते थे कि मेरा इरादा है कि मैं तलाक दे दूं। एक दफा उन्होंने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि मैं जैनब को तलाक देना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि वो अपने खानदानी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्यों, तो उन्होंने बताया कि वो अपने खानदानी शरफ की वजह से मेरे मुकाबले में बड़ाई का एहसास रखती है। वो जो है तताअज्जम अलैया लिशर्फिहा, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उनके अंदर जो खानदानी बड़ाई का और शराफत का एहसास है, तो इस वजह से मैं उन्हें तलाक देना चाहता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चली कि ये तलाक देना चाहते हैं, तो आपने उन्हें रोका और बार बार हजरत जैद रजी अल्लाह अनहो से ये दरख्वास्त की कि मतलब तलाक ना दें। लेकिन जब हजरत जैद रजी अल्लाह उन्होंने बार बार आपसे जो है कहा कि मैं तलाक देना चाहता हूं, तो आपने उसकी इजाजत दे दी। अच्छा, जब जो है वो हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा का हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हो से निकाह हो चुका था, तो उस वक्त जो है आप इस बात को आप समझें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बजरिया वही जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बता दी थी कि जब हजरत जैद जो है अपनी बीवी को तलाक दे देंगे, यानी अल्लाह ताला ने आपको वही के जरिए आगाह कर दिया था कि जैद रजी अल्लाह अन्हो हजरत जैनब को तलाक देकर रहेंगे, जब इनकी तलाक वाकया हो जाएगी तो हजरत जैनब का निकाह आपसे कर दिया जाएगा, ताकि वो जो जमाने जाहिलियत की रस्म है कि अरब अरब लोग जो है वो मुंह बोले बेटी की जो बीवी है उसको हकीकी बहू की तरह समझते हैं, यानी मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटे की तरह समझते हैं और उसकी बीवी से फिर निकाह नहीं करते। तो जब वो तलाक दे दे तो इस रस्म जो है इसको भी खत्म करना होगा, और मुंह बोला बेटा हकीकी बेटे की तरह नहीं है, तो इसकी मुतलका से निकाह जायज है, और फिर आपको आपका निकाह जो है वो हजरत जैनब से होगा और आपको हजरत जैनब से निकाह जो है वो करना होगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो वही के जरिए ये बात पता चल चुकी थी, और आप जो हैं वो इस बात से डरते थे, घबराते थे कि मुनाफिक जो हैं, मुशरिकीन यहूदी मुनाफिक आपके खिलाफ प्रोपेगंडे का एक तूफान खड़ा कर देंगे और अल्लाह के इस हुक्म की अहमियत को समझेंगे ही नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करेंगे और अपने दिल की जलन जो है उसको निकालने के लिए झूठ और बोहतान और ताने देंगे, तो औरों को भी वो शकूक शुभात में मुब्तिला करेंगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इसलिए परेशान थे और आपके लिए, आपको ये बात बहुत ही मुश्किल लग रही थी कि आप जो हैं हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा से निकाह कर लें, और वजह क्या थी कि जमाने जाहिलियत की रस्म के मुंह बोला बेटा जो है वो हकीकी बेटे की तरह है और उसकी मुतलका से निकाह करना जो है ये जायज नहीं है। अल्लाह ताला ये चाहते थे कि इस रस्म को तोड़ दिया जाए। पहले रस्म तोड़ी गई कि मुआशरती फर्क को खत्म किया गया और निकाह करवाया गया हजरत जैनब का हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हो के साथ, और अब दोबारा रस्म तोड़नी थी मुंह बोले बेटे वाली जिसे हकीकी बेटे की तरह समझते थे। और नबूवत के फराइज में से एक बड़ा फर्ज ये होता है कि नबी जो है, रसूल जो है, सोसाइटी की रस्मों को तोड़ता है, और अब इस रस्म को तोड़ने की यही बेहतरीन शक्ल थी कि तलाक के बाद हजरत जैनब का निकाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया जाए, क्योंकि लोग उनको जो है वो पता था लोगों को कि जैद बिन मोहम्मद पहले कहा जाता था और अलग बात है कि बाद में उनको ज़ैद बिन हारसा कहा जाने लगा, तो सोसाइटी के ज़हनों से इस तरह की बातें इतनी आसानी से तो नहीं जाती। तो मुंह बोले बेटे की मुतलका औरत से अगर आपका निकाह है हो जाए तो ये रस्म जो है इस रस्म के खिलाफ एक धमाके की हैसियत थी, बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि लोग समझते थे कि मुंह बोले बेटे की मनकूहा बाप पर हराम है, जिस तरह हकीकी बेटे की मनकूहा जो है यानी जिससे निकाह हो बाप पर हराम होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए पहले से ये बात बताई जा चुकी थी कि जब जैनब और जैद दोनों की अलहदगी होगी तो जाहिली रस्म को तोड़ने की तदबीर के तौर पर जैनब को आपके निकाह में दे दिया जाएगा। तो यहाँ अगली आयत में इसी वाक्य का जिक्र है और इस वाक्य में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इन पर एक तरह का मोहब्बत भरा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से नाराजगी का इजहार है। वह इस तकूलू और जब तुम कह रहे थे, और जब तू कहता था लिल्लाजी उस शख्स को, और लिल्लाजी जो है इसके मानी है ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अनहो, और जब आप उस शख्स से कह रहे थे इस याद करो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरा याद करें वो मौका जब तुम ज़ैद बिन हारिसा से कह रहे थे अन अमल्लाहु अलैहि, जिस पर अल्लाह ने एहसान किया था। तो अल्लाह ताला ने हजरत ज़ैद रजी अल्लाह अनहु पर क्या एहसान किया था? नंबर एक कि हजरत ज़ैद रजी अल्लाह अनहु को इस्लाम की तौफीक अता की। आपको पता ही है कि इस्लाम लाने वालों में खवातीन में हजरत खदीजा रजी अल्लाह अनहा, आजाद खवातीन में से आजाद मर्दों में से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनहो, और लड़कों में से हजरत अली रजी अल्लाह अनहो, और गुलामों में से हजरत ज़ैद रजी अल्लाह अनहो का नाम जो है वो सरे फहरिस्त है। तो अल्लाह ताला का एहसान यह था कि हजरत ज़ैद रजी अल्लाह अनहो को जो है वो इस्लाम की तौफीक अता की। फिर दूसरा एहसान क्या था कि हजरत ज़ैद रजी अल्लाह अनहो को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता की। अन अमल्लाहु अलैहि के वो शख्स जिस पर अल्लाह ने इनाम किया था, वह अन अमता अलैहि, अन अमता ता की जमीर जो है ये आई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए के इनाम किया था तूने अलैहि इस शख्स पर। ये अलैहि अलैहि जो है दोनों दफा हजरत ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु के लिए आया है कि ऐ नबी याद करो मौका जब तुम उस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने एहसान किया था और तुमने भी एहसान किया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या एहसान किया था? इस सिलसिले में आप याद रखें कि हजरत ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु ये कबीला कलब के कैफ लाम बा, कलब जो कुत्ते वाला है यानी कश्मीर वाला, तो उसके एक शख्स हारिसा के बेटे थे। इनकी वालदा थी सौदा, कबीला त्रय की शाख से थी, और जब ये 8 साल के बच्चे थे तो हजरत ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु की वालदा इन्हें लेकर अपने मेके गई, और वहां पे कुछ लोगों ने जो इनका जहां पे ये रुके हुए थे वहां पे हमला कर दिया और लूट मार कर जिन आदमियों को पकड़ कर ले गए इनमें हजरत ज़ैद भी थे। उस जमाने में माल असबाब लूटने के साथ जो है वो बच्चे और इंसान जो है उनको भी लूट मार के माल में शामिल किया जाता था। तो हजरत ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु को भी लूट कर ले गए। फिर उन्हें ताइफ के करीब उकास के मेले में जाकर बेच दिया। खरीदने वाले कौन थे? हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के भतीजे हकीम बिन हजाम, उन्होंने उन्हें खरीदा, मक्का लाकर अपनी फुफो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की खिदमत में पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह हुआ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत ज़ैद को देखा तो इनकी आदतें आपको बड़ी पसंद आई, और फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत ज़ैद को आपकी खिदमत के लिए दे दिया, वक्फ कर दिया। तो इस तरह ये लड़का जो था चंद साल बाद जो है नबी बनने वाले शख्स के पास चला गया। तो नबी बनने वाले कौन थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त हजरत ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु की उम्र 15 साल थी। پھر کچھ مدت بعد ان کے والد ان کے چچا کو پتا چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ہے، وہ تلاش کرتے ہوئے رسول اللہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ جو چاہیں ہم فدیہ دینا چاہیں گے، ہم فدیہ دینے کو بدلہ دینے کو تیار ہیں، بس آپ ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لڑکے کو بلاتا ہوں، اس کی مرضی پر چھوڑے دیتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے یا میرے پاس رہنا پسند کرے. اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں کوئی فدیہ نہ لوں گا، یوں ہی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو تو اسے خام خواہ نکال دوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو آپ نے بڑی انصاف کی ہے، تو چلیں ٹھیک ہے آپ بچے کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں. پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ آپ ان دونوں کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا. پھر آپ نے فرمایا اچھا تو تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی، اب تمہیں پوری آزادی ہے، چاہے تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ رہو. انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا. ان کے باپ اور چچا نے کہا زید کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس شخص کے جو اوصاف دیکھے ہیں ان کا تجربہ کر لینے کے بعد اب میں دنیا میں کسی کو بھی اس پر ترجیح نہیں دے سکتا. زید رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کر ان کے والد اور ان کے چچا خوشی سے راضی ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع عام میں اعلان کیا کہ آپ سب لوگ گوار ہیں، آج سے زید میرا غلام نہیں میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے، اسی بنا پر پھر لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے. اور یہ واقعہ جو ہے یہ نبوت سے پہلے کا ہے، کیونکہ جب نبی بنے تھے تو پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی آپ پر جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے. تو اس وقت حضرت زید کی عمر 30 سال تھی اور رسول اللہ کی خدمت میں رہتے ہوئے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جب آپ نبی بنے 15 سال ہو چکے تھے. اور ہجرت کے بعد 4 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی پھپھوزاد بہن حضرت زینب سے ان کا نکاح کیا تھا، مہر بھی خود دیا اور گھر بسانے کے لیے ان کو ضروری سامان بھی خود عطا کیا. تو وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس پر تم نے احسان کیا تھا. تو یہ احسان تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا احسان تھے؟ نمبر ایک، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ بیٹا بنایا. نمبر دو، غلام تھے پھر آزاد کر دیا. نمبر تین، وراثت میں حصہ دینے کا اعلان کیا. نمبر چار، قریش کے اونچے خاندان میں شادی کر دی. اور جیسے باپ بیٹے کے لیے جو ہے وہ مہر اور شادی کا انتظام اور گھر بسانے کا سامان دیتا ہے، بالکل آپ نے ایسا ہی کیا. تو یہ احسانات تھے جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے، شخص ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ، کہنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا، یعنی اللہ کا بھی احسان تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ عنہ کو کیا کہہ رہے تھے، اس کو آپ نوٹ کر لیں. امسک علیکا زوجکا واتق اللہ، کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زید آ کے بتاتے تھے کہ میری اور زینب کی انبن رہتی ہے، لڑائی رہتی ہے اور میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، اور اس وقت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے تھے کہ آپ اسے طلاق نہ دیں. حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اگرچہ اللہ کا حکم مان کر، اللہ کے رسول کا حکم مان کر ان کے نکاح میں جانا قبول کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے دل سے اس احساس کو کبھی مٹا نہ سکی کہ زید ایک آزاد کردہ غلام ہے اور ان کے خاندان کے جو ہیں وہ اپنے ہی پرورش کردہ ہیں، اور عرب کے شریف ترین گھرانے کی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ کم تر درجے کے آدمی سے بیائی گئی ہیں. تو یہ احساس تو جو تھا نا، ان کی ازدواجی زندگی میں تلخی کا سبب تھا. تو اس لیے نوبت جو تھی وہ طلاق تک پہنچ گئی. اور حضرت زید جب آ کر پیارے رسول سے کہتے تھے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، اور وہ اپنے حالات بار بار بتاتے تھے، درخواست کرتے تھے کہ آپ مجھے اسے طلاق دینے کی اجازت دے دیں، प्यारे रसूल कहते थे अमसिक अलैका। अमसिक जो है मीम सीन काफ, इसका रूट है और इसका मतलब है पहले से मौजूद चीजों को पकड़े रखना, चिमटे रहना, उनसे उनकी हिफाजत करना, उन्हें हाथ से ना जाने देना। तो आप ये कहते थे कि इसे रोके रख, अलैका अपने पास, जौजा का अपनी बीवी को, यानी जैनब को अपने पास ही रख, इसको बीवी बना के रख, इसे तलाक ना देना। क्यों आप ऐसा करते थे? तो पहली बात आप ये कहते थे, दूसरी कहते थे वत्तकिल्लाह, और अल्लाह से डर, और साथ ही आप ये कहते थे कि अल्लाह से डर। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हो को ऐसा क्यों कहते थे कि अल्लाह से डर? मुफस्सरीन कहते हैं कि असल वजह यह थी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने वही के जरिए ये बात बता दी थी कि जब हजरत जैद निकाह यानी हजरत जैनब को तलाक देंगे तो फिर आपको उनसे शादी करनी होगी। और मुंह बोला बेटा जो है वो हकीकी बेटे की तरह नहीं होता, तो अरबों की इस रस्म को तोड़ना होगा। तो आप जो हैं उनसे ये कहते थे कि तुम अल्लाह से डरो और तलाक मत दो, और क्योंकि आपको ये पता था कि जब ये तलाक देंगे तो फिर मुझे निकाह करना पड़ेगा, और जब मैं निकाह करूंगा तो ये एक इसकी निकाह की हैसियत जो है वो एक धमाके की तरह होगी, यानी सोसाइटी में ये बात ऐसे है जैसे कोई धमाका हो गया, और फिर लोगों की बातें और ताने और बहुत सी फजूल बातें तो वो मुझे सुननी पड़ेगी। और आप जो हैं इस बात से जो थे वो घबरा रहे थे। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि तुम जैद से कह रहे थे कि अपनी बीवी को ना छोड़, वत्तकिल्लाह, और अल्लाह से डर। और अल्लाह से डर जो है अगर आप देखें तो इसके मानी यही हैं कि आप कोशिश करें कि इसको निभाने की, और ये जो निकाह हुआ हुआ है इसको निभाने की, और छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं उसमें उनको नजरअंदाज करना चाहिए। तो अल्लाह से डर यानी इसके हकूक में कोताही ना कर। ऐसा हो जाता है कि मियां बीवी में आपस में झगड़ा हो जाता है, अनबन हो जाती है, तो शिकायतें जो हैं उनको नजरअंदाज करके और आपस में ताल्लुकात जो है उनको दुरुस्त किया जाए। तो ये कह रहे थे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला फरमाते हैं वतुख्फी, और तुम छुपा रहे थे, फी नफ्सी का जो तुम्हारे दिल में था, उस वक्त तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे। क्या बात छुपा रहे थे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो जो अल्लाह ताला ने वही के जरिए आपको पशीन गोई से आगाह कर दिया था कि जैद की तरफ से तलाक वाकया हो करेगी और इसके बाद जैनब का निकाह आपसे कर दिया जाएगा, ताकि जाहिलियत की जो मुंह बोले बेटे के बारे में रस्म है उसको खत्म कर दिया जाए कि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटे की तरह नहीं है और उसकी मुतलका से निकाह जो है वो जायज है। तो ये था कि वह तुख्फी फी नफ्सी का, और तुम छुपा रहे थे अपने दिल में, वल्लाहु मुब्दीही, वल्लाहु जिसको अल्लाह जो है मुब्दी ही जाहिर करना चाहता था, खोलना चाहता था, मुब्दी ही जाहिर करने वाला, बादाल वो इसका रूट है और अल्लाह उसको जाहिर करने वाला था, वतख्शन नासा, और तुम लोगों से डर रहे थे। अब आप देखें कि यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो है तुम लोगों से डर रहे थे। अब ये जो डर है ऐसा नहीं है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो लोगों से डर रहे थे, लेकिन तबीयी तौर पे इंसान के अंदर एक डर पाया जाता है, इंसान को एक खौफ होता है। तो यहाँ पे उस खौफ का जिक्र किया जा रहा है कि क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इस बात से डर रहे थे कि लोग कहेंगे कि देखे ये कैसे हैं, इन्होंने अपनी बहू से निकाह कर लिया, और लोग जो बातें करते हैं तो लोगों की बातों से और उनकी वो जो लुक होती है उनसे और उनके तबसरों से डरते हुए, बहुत सी जायज चीजें आज भी जो है हमारी सोसाइटी में नहीं होती। मसलन हमारी औरतें जो हैं वो बिन ब्याही बैठी रहती हैं, तलाक हो गई है, शोहर फौत हो गया है, तो लोग कहते हैं कि लो जी जो है वो कैसे इसने निकाह कर लिया ना, और पसंद घर वाले भी पसंद नहीं करते, औरत भी पसंद नहीं करती। अरब के अंदर देखें तो ये चीज नहीं है, यहाँ की सोसाइटी में ये चीज नहीं है, लेकिन मुसलमानों के अंदर हिंदुओं से ये बात आ गई है। और औरत का दूसरा निकाह जो है उसको बहुत ही मायूब समझा जाता है। इसी तरह जैसे मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत है तो उसको भी जो है वो मायूब समझा जाता है। और भी बातों पे आप गौर कर सकती हैं, इसी तरह विरासत में हिस्सा लेना। तो बहुत सी बातें जो इस्लाम के मुताबिक ठीक है, जमाने के रस्म रिवाज से जो मैच नहीं करती ना, तो क्या करते हैं लोग कि वतक्षन नासा, कि लोगों से वो डरते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फितरी तौर पर ये खौफ था कि लोग क्या कहेंगे कि बहू से निकाह कर लिया, आप इससे डर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कि ये एक फितरी खौफ था जो आपके अंदर पाया जाता था, लेकिन इसके बावजूद आपको तंबीह कर दी गई और इस बात का ऐलान कर दिया गया कि अल्लाह जो है वो इस बात को जाहिर करेगा, मानी है निकाह होकर रहेगा। वल्लाहु अहक अन तख्शाहु, हालांकि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि उससे डरा जाए। इसको जो है ना आप हाईलाइट करें कि असल जो डर और खौफ है वो अल्लाह का होना चाहिए, ना कि सोसाइटी का, ना कि लोगों के तानों का, ना कि लोगों की बातों का। तो दुनियावी मसलहत को छोड़कर दीनी मसलहत को सामने रखना चाहिए। तो असल बात क्या है कि अल्लाह का डर, अल्लाह अल्लाह ताला जो है उसको राजी करने की फिक्र की जाए। और अल्लाह ताला एक बड़ी मसलहत की खातिर आपसे ये काम लेना चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर से जो रस्में हैं उनको खत्म किया जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका जो मकाम था आपकी रिसालत का, आपकी नबूवत का, तो उसका मर्तबा जो था बहुत ही बुलंद था, और अल्लाह ताला आपको उस बुलंद मर्तबे पर देखना चाहते थे। तो आपने जो जानबूझकर ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु को तलाक से रोका ताकि आप उस काम से बच जाएं जिसमें आपको अपनी बदनामी का अंदेशा था, तो इसकी बड़ी वजह क्या थी कि आप जो है वो लोगों की खातिर मसले से काम लेते हुए लोगों के डर की वजह से आप चाहते थे कि ना वो तलाक दें और ना आपको निकाह करना पड़े। तो यहां पर जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब ज़ैद ने आकर उनसे आपसे शिकायत की थी तो आपने जो इनसे फरमाया कि अल्लाह से डर और अपनी बीवी को ना छोड़, तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं तो तुम्हें पहले बता चुका था कि तुम्हारा निकाह ज़ैनब से करने वाला हूं। तुम ज़ैद से ये बात कहते वक्त उसको उस बात को छुपा रहे थे जिसे अल्लाह जाहिर करने वाला था। तो इस बात पर अल्लाह ताला ने जो है वो पकड़ की है। मुफस्सरीन कहते हैं कि जब हजरत ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु आके आपको बता रहे थे कि मैं तलाक देने वाला हूं, देना चाहता हूं, हमारा आपस में रिश्ता नहीं निभरा, तो उस वक्त प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खामोश रहना चाहिए था, या ज़ैद से कहते कि तुम जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। तुमने ये क्यों कहा ज़ैद से, ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु से, कि अपनी बीवी को ना छोड़, हालांकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था कि ज़ैनब तुम्हारी बीवियों में शामिल होगी। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, हालांकि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि तुम अल्लाह से डरो। और ये एक खास वाक्य में ये आयात नाजिल हुई और इसका ताल्लुक उस वाक्य से भी है और इसका ताल्लुक आम जिंदगी के मामलात से भी है और सब मुसलमानों के लिए है। और आप अपना मुहासबा करें, हर मुसलमान, मैं, आप सब मुहासबा करें कि कितने काम ऐसे हैं जो जायज होते हैं लेकिन जो है वो लोगों के डर की वजह से, सोसाइटी के डर की वजह से जो है वो नहीं किए जाते, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होते हैं। अब लोग क्या कहेंगे, तो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह क्या चाहता है। आप जरूर उन बातों को नोट करें कि कौन कौन से ऐसे काम है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ठीक है लेकिन आप कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे और फिर आप उस पर जो है वो अमल नहीं करती। फलम्मा कदा ज़ैद मिन्हा वतरन, फिर जब ज़ैद उससे अपनी हाजत पूरी कर चुका। वतरन वो त्वा रा इसका रूट है और ये जो है हाजत ख्वाहिश के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे हाजत ज़ौजियत और वतर जो है यहाँ पे दरअसल तलाक के मानी में है कि जब ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को तलाक दे दी और उनकी इद्दत खत्म हो गई। کلمہ قضا زیدن. اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے. واحد خاتون کا نام آیا ہے وہ ہے حضرت مریم, اور واحد یہ صحابی ہیں حضرت زید جن کا نام آیا ہے. تو پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا یعنی انہیں طلاق دے دی, عدت ختم ہو گئی, زوجنا تھا, تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے زوجنا نکاح کر دیا, نہ ہم نے کا تجھ سے, ہا حضرت زینب کا. دیکھیں ایک لفظ کے اندر کتنی باتیں پائی جاتی ہیں. تو یہ جو ہم نے اس خاتون کا زینب کا آپ سے نکاح کر دیا, اس کے دو معنی ہیں, خود ہی نکاح کر دیا یعنی عام شرائط نکاح سے مستثنا. دوسرے معنی ہیں کہ ہم شرعی قواعد اور شرائط کے مطابق جو ہے یعنی اللہ نے حکم دے دیا کہ نکاح کر دے, یعنی ہم نے نکاح کر دیا, تو اب جو ہے آپ شرعی جو قواعد ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ نکاح کر لیں. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ یہ میرا فیصلہ تھا, یہ میرا فیصلہ تھا, اور فیصلہ یہ تھا کہ آپ کا نکاح جو ہے وہ زینب سے کر دیا جائے, اور پھر ہم نے جو ہے وہ زینب سے جو ہے وہ تمہارا نکاح کر دیا. زوجنا کہا, تو ہم نے تمہارا زینب سے نکاح کیوں کیا؟ لکی لا یکون علی المومنین حرج, تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے. لکی تاکہ لا یکون نہ ہو علی المومنین مومنوں پر حرج دل کی گھٹن. حرج جیسے جھاڑی کے لیے, جھاڑی کو کہتے ہیں کہ جس میں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے, اسی طرح دل کی گھٹن کے لیے, تنگی کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے, تاکہ مومن جو ہیں وہ کسی کام میں جو ہے وہ تنگی محسوس نہ کریں ان کے دل. کس کام میں؟ فی ازواج, بیویوں کے معاملے میں. زوج واحد ہے, ازواج جمع ہے. ادعیائہم, ادعیا جو ہے اس کے معنی ہے دال عین واو اور دعو, اس سے مراد ہے جیسے منہ بولے بیٹے. تو جیسے کسی کو منہ سے پکارنا ہے نا, تو ادعیائہم منہ بولے بیٹوں کے, منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں تنگی نہ رہے, اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے حضرت زینب کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے. کہ جب حقیقی بیٹے نہیں ہیں, منہ بولے بیٹے ہیں, تو ان کی حیثیت حقیقی بیٹے جیسی نہیں ہے, کیونکہ حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اگر حقیقی بیٹا نہیں ہے اور منہ بولے بیٹے کی حیثیت تو حقیقی بیٹے کی نہیں ہے, تو اب جو ہے اس رسم کا خاتمہ کر دیا جائے جو زمانہ جاہلیت کی رسم ہے. اس لیے رسول جو ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہوتے ہیں شریعت کو نافذ کرنے والے, وہ ہوتے ہیں رسموں کو توڑنے والے, اور اس رسم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی ختم کرنا تھا, اور اس لیے آپ کا نکاح جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے کر دیا گیا, اور تاکہ باقی مسلمان مومن مرد جو ہیں پھر وہ اس رسم کا خاتمہ کر دیں. کب؟ اذا قضوا منہن وطرا, جب کہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں. تو یہاں پر جو ہے یہی بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ضرورت کے خاطر خود کروایا تھا, اور مقصد تھا جاہلیت کی رسم کو توڑنا, اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو آگے بڑھ کر توڑے. اور یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھر میں ایک بیوی کا اضافہ کروانے کی خاطر نہیں کیا تھا, بلکہ اس اہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا تھا. یہ تھے اس کے اصل معنی کہ اذا قدو منہن وطرا, کہ اذا قدو کہ جب وہ پوری کر لیں, منہن ان سے, وطرا حاجت, تو معنی ہے کہ جب وہ طلاق دے چکے और उनकी इज्जत पूरी हो चुके तो फिर जो है मोमिन मर्द अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों से भी निकाह कर सकते हैं। फकान अम्रुल्लाह मफूला, और अल्लाह का हुक्म तो अमल में आना ही चाहिए था, तो अल्लाह का जो फैसला है वो पूरा होकर रहता है, यानी अल्लाह के फैसले को कोई रोक नहीं सकता। मा काना अलन नबी मिन हरजिन, नबी पर किसी काम में कोई रुकावट नहीं है, कोई तंगी नहीं है। फीमा फरद अल्लाहु लह, जो अल्लाह ने इसके लिए मुकरर कर दिया हो। अब आप देखें कि यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये रस्म को तोड़ना और मुंह बोले जो बेटा था उसकी बीवी से निकाह करना फर्ज था। क्यों? अल्लाह ताला ने ये फर्ज आप पर मुकरर किया था और ये काम जो है वो आपको करना ही था, यानी तकदीर इलाही में था ये काम आपको करना था और ये निकाह आपके लिए हलाल था, इसमें कोई गुनाह वाली, इसमें कोई तंगी वाली बात नहीं थी। मा काना लिन्नबी मिन हरजिन, हजरत ज़ैनब से निकाह के करने में कोई रुकावट वाली बात नहीं थी, कोई तंगी वाली बात नहीं थी, कुछ हरज नहीं था। फीमा फरद अल्लाहु लहु, जो अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फर्ज कर दिया था। सुन्नत अल्लाह, ये है अल्लाह की सुन्नत। फिल लजीना खलू मिन कब्ल, उन सब उन तमाम नबियों के मामले में जो पहले गुजर चुके हैं। सुन्नत अल्लाह, ये अल्लाह की सुन्नत है। फिल लजीना, अल्लाह जीना की जमीर पैगम्बरों के लिए आई है, जमा का सीगा है, पैगम्बरों के लिए आई है। खलू मिन कब्ल, जो पहले गुजर चुके, के ऐसे कामों के करने में कोई हरज महसूस न किया जाए जो अल्लाह ताला की तरफ से पैगम्बरों पर फर्ज किए जाते रहे, और ये तमाम पैगंबर ये काम करते रहे, चाहे वो मामलात कौम से मुतल्लिक थे, अवाम से थे, रस्म और रवाज से मुतल्लिक थे। तो तमाम नबियों की ये सुन्नत है कि वो अल्लाह के फैसले के आगे झुक जाते थे। वकाना अम्रुल्लाही कदरम मकदूरा, और अल्लाह का हुक्म तो एक कतई तयशुदा फैसला होता है। अल्लाह ताला जो काम पैगंबर को कह दे वो काम होकर ही रहना होता है, सारी दुनिया उसकी मुखालफत करे। तो यहां पर ये बात जो है वो बताई जा रही है कि पैगंबर जो है वो क्या करते हैं कि जो अल्लाह का फैसला होता है उसको नाफिज करने वाले होते हैं, और अल्लाह का फैसला टल नहीं सकता। कदरम मकदूरा, और कदर जो है मुकर्रर किया गया, मकदूरा अंदाजे से। तो कदर जो है ये लोहे महफूज में लिखे हुए अजली फैसले को कहते हैं। अल्लाह का हुक्म एक अजली फैसला है और दुनिया में वक्तन फक्तन उसी के मुताबिक अमल होता है। मकदूरा मुकरर करता, ये सब मफूल है। फिर आयत नंबर 39 है, 39, इसमें अंबिया की खास सिफात का जिक्र किया गया है कि अंबिया जो है उनका क्या फर्ज होता है। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालतिल्लाहि, नंबर वन, ये अल्लाह की सुन्नत उन लोगों के लिए होती है जो अल्लाह के पैगामात को पहुंचाते हैं। तो ये काम जो है ये पैगंबरों का काम है। वो क्या करते हैं कि वो अल्लाह के पैगामात पहुंचाते हैं, यानी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, अल्लाह के फैसले के मुताबिक जो है वो अमल करते हैं। ये है पैगंबरों की सुन्नत। अंबियाए साबिकीन की ये सिफत है कि वो अल्लाह के पैगाम की तबलीग करते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने पिछले पैगंबरों पर डाली उन्होंने बगैर किसी खौफ के उसको अदा किया, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले अंबिया की सुन्नत पर चलते हुए अब आपको भी ये फर्ज जो है वो अदा करना है। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाही, ये पैगंबरों की सिफत रही कि उन्होंने लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, वो अल्लाह के पैगामात पहुंचाते रहे। वयख्शूनहु, और वो अल्लाह ही से डरते रहे। हु की जमीर अल्लाह के लिए आई है, दूसरी सिफत का यहाँ पे पैगंबरों की। नंबर तीन, वला यख्शौन अहदन इल्लल्लाह, और एक अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। वकफा बिल्लाहि हसीबा, और मुहासबे के लिए बस अल्लाह ही काफी है। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے پچھلے پیغمبر نہیں ڈرے کسی سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نہیں ڈرنا، اور پھر ان آیات کی روشنی میں تمام مسلمانوں کے لیے عمل کا یہ اصول نکلتا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں پیغمبروں کو اپنا رول ماڈل بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں، اللہ کے احکامات قولن بھی اور عملن بھی جیسے نبیوں نے پہنچائے، جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائے، وہ ہمیں بھی پہنچانے ہیں، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر مسلمان کو. نمبر دو، اللہ ہی سے ڈرنا ہے. نمبر تین، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو نکاح کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ عمل سے تبلیغ ہے. رسم کو توڑا آپ نے. اسی طرح منہ بولا بیٹا جو ہے اس کو باپ کے نام سے پکارا جائے، نہ کہ آپ کے نام سے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ عمل سے جو ہے وہ رسم کا خاتمہ ہے. تو باتیں تو سبھی بہت کرتے ہیں، لیکن عمل کرنا کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ کہ پھر بہت سی باتیں جو ہیں لوگوں کی رسم، لوگوں کا جو تانے دینا ہے اور لوگوں کا جو رسوا کرنا ہے، وہ پاؤں کی زنجیر بنتا ہے، خوف ہوتا ہے لوگوں سے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فرض ادا کرنا تھا، اور آپ نے کسی کا خوف نہ کیا اور آپ نے اس پر عمل کیا. تو یہاں پہ بھی یہی پیغام ہے، کیونکہ ہر رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اور یہاں پہ رسولوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ رسولوں کا مقام جو ہے، ان کی ذمہ داری جو ہے بڑی ہی اہم ہوتی ہے، بڑی ہی نازک ہوتی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے، یعنی ہر خوف اور خطرے کے مقابلے میں اللہ کافی ہے. نمبر دو، حساب لینے کے لیے بھی اللہ کافی ہے، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی پھر جو ہے وہ حساب لے گا. پھر آیت نمبر 40 ہے، اس میں ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس میں یہ اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. وہ کون ہے؟ ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس ایک آیت میں تین باتیں جو ہیں وہ سامنے رکھی گئی، اور ایک آیت میں، ایک فقرے میں ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی جو مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح پر کر رہے تھے. مخالفین یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اور جو ہے یہ نکاح جو ہے یہ تو حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمائی پہلی بات کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی اگر محمد کا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ اپنی پھر بہو سے نکاح کرتے تو حرام ہوتا. تمہیں خود پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے کوئی بیٹا ہے ہی نہیں. آپ کو پتا ہی ہے نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے تھے، قاسم، طیب اور طاہر، لیکن وہ زندہ نہ رہ سکے. اسی طرح ماریا سے ابراہیم پیدا ہوئے تھے اور وہ بھی چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے. تو پہلا جواب یہ دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے جو ہے وہ کسی کے بھی باپ نہیں ہیں. اور دوسری بات کہی ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے. تو اس کے معنی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا کوئی ضروری تھا، جائز تھا، لیکن ضروری تھوڑی تھا کہ آپ جو ہیں وہ ضرور پھر نکاح کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ رسول ہونے کی حیثیت سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض تھا کہ جس حلال چیز کو اہل عرب کی رسموں نے خامخواہ حرام کر رکھا ہے، پھر اس رسم کا خاتمہ کیا جائے، تاکہ لوگوں کو اس کے حلال ہونے کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہ رہے. پھر تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وخاتم النبیین، مزید تاکید کے لیے کہ وہ تو خاتم النبیین ہیں. خاتمہ جو ہے یہ کہتے ہیں مہر کو، مہر لگانا. मोहर जो है ये स्टैंप लगाने को कहते हैं, ये आखिरी अमल होता है, यानी किसी चीज पर स्टैंप लगा दी जाए, उसको बंद कर दिया जाए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने नबूवत और रिसालत का खात्मा कर दिया है और अब आपके बाद जो है वो कोई नबी नहीं आएगा, यानी इनके बाद कोई रसूल तो दन किनार, कोई नबी तक आने वाला नहीं है। तो यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि वह खातम नबीन, कि वो अल्लाह के रसूल और खातम नबीन है, नबुवत का खात्मा करने वाले। तो निकाह की ये जो मुंह बोले बेटे के मामले में जो निकाह की रस्म थी, तो इसको खत्म करना इसलिए जरूरी था कि आप अब आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई जो है वो ना रसूल आएगा ना कोई नबी आएगा, तो मुआशरे की इस्लाह जो थी वो जरूरी थी ताकि जो रस्में हैं उनका खात्मा किया जाए। तो अगर कोई नबी आने वाला होता तो वो फिर आकर इस रस्म का खात्मा कर सकता था। तो अब ये जरूरी हो गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस रस्म का खात्मा कर दें। तो ये आखिरी नबी हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं, और रसूल का फर्ज है कि वो रस्मों का खात्मा करें और फिर आखिरी, तो बाद में कोई आना नहीं था तो इसलिए आपसे इसका खात्मा करवाया गया। तो ये हैं जो है वो इस आयत के मानी। और आप देख लें कि हमें बहुत सी अहदीस मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी हैं। जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी की रवायत है, कि बनी इसराइल की क़यादत अंबिया किया करते थे, जब कोई नबी मर जाता तो दूसरा नबी इसका जानशीन होता, मगर मेरे बाद कोई नबी ना होगा बल्कि खुल्फा होंगे। फिर इसी तरह हमें बुखारी की एक और हदीस मिलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मुझसे पहले गुजरे हुए नबियों की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने एक इमारत बनाई और खूब हसीन और जमील बनाई, मगर एक कोने में एक ईंट की जगह छोटी छोड़ी हुई थी, एक जगह छूटी हुई थी। लोग इस इमारत के गिर फिरते और इसकी खूबी पर इजहार हैरत करते थे, मगर कहते थे कि इस जगह ईंट क्यों ना रखी गई, तो वो ईंट मैं हूं और मैं खातमन नबीयीन हूँ, यानी मेरे आने पर नबूवत की इमारत मुकम्मल हो गई, अब कोई जगह बाकी नहीं जिसे पुर करने के लिए कोई आएगा। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये खातमन नबीयीन हैं। फिर आयत नंबर जो है वो 40 की आखिरी बात, वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। इसके मानी है कि अल्लाह को मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों इस जाहिलियत की रस्म का खात्मा करवाया जाएगा और करवाना जरूरी था, और अल्लाह ताला ने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इस रस्म का खात्मा जो है वो करवा दिया। आयत नंबर 41, या अय्युहल्लज़ीन आमनु, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि तुम अल्लाह को कसरत से याद करो। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो ईमान लाने वालों मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम अल्लाह को कसरत से याद करो, वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और सुबह शाम इसकी तस्बीह करते रहो। तो एक तरफ जो है कसरत से जिक्र करने का हुक्म दिया गया और दूसरी तरफ जो है ये कहा जा रहा है कि सुबह शाम इसकी तस्बीह करते रहो। असल में ये नसीहत मुसलमानों को की जा रही है, क्यों की जा रही है? इसकी वजह ये है कि जब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो निकाह कर लिया तो मुनाफिकीन ने, फसादियों ने मुहाजराई का तूफान खड़ा कर दिया, बातें करने लगे, मजाक उड़ाने लगे, और जो है वो कोई कहने लगा कि देखें जी अपनी बहू से जो है वो निकाह कर लिया, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज बिल्ला, उन्होंने सोचा, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि आप निकाह करना चाहते थे और इसलिए फिर जो है वो आपने, मतलब हजरत जैद ने तलाक दी ताकि आप निकाह कर लें, और इस तरह की बहुत सी गलत किस्म की बातें लोगों ने सोसाइटी में करनी शुरू कर दी और इससे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आम मुसलमान भी जो है वो परेशान थे। तो यहाँ पर जो है वो अमल का बहुत ही अहम उसूल दिया जा रहा है। मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों अल्लाह ताला का जिक्र बहुत ज्यादा किया करो। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि कोई भी इबादत अल्लाह ताला ने कसरत से करने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन जो अपना जिक्र है ये कसरत से करने का हुक्म दिया है। इसकी वजह ये है कि ये जिक्र की इबादत जो है ये आसान है, ये हर हाल में की जा सकती है, ये बगैर वुजू के की जा सकती है। और फिर ये कि जिक्र जो है ये दरअसल अल्लाह की याद है जो तमाम इबादात की रूह है, जैसे मगज की इसकी हैसियत है। तो यहाँ पर जो है यही बात मुसलमानों से कही जा रही है कि असल चीज ये है कि तुम अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा जो है वो याद करो, और जब इंसान जो है वो अल्लाह को याद करता है तो फिर उसको लोगों की परवाह नहीं होती, फिर वो क्या करता है कि बस वो अल्लाह की अतात करता है, क्योंकि अल्लाह की याद दरअसल अल्लाह की बंदगी पर आमादा करती है। तो अब यहाँ पर एक तो इसी पसे मंजर में इस वाक्य के, दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर इतना एहसान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो भेजा, जो कि अल्लाह के रसूल हैं, खातमुन नबीयीन हैं, और इस पर मुसलमानों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और कसरत से अल्लाह को याद करना चाहिए। और ये जो याद है ये सुबह भी होनी चाहिए और शाम भी। मुफस्सरीन कहते हैं कि सुबह शाम अल्लाह को याद करना, इसके एक मानी तो तस्बीह के हैं, जिक्र के हैं, जिसके दूसरे मानी नमाज के हैं। जिस तरह इंसान की सांस हर वक्त आती रहती है ना, बिल्कुल इसी तरह जो है वो हर वक्त अल्लाह को याद करना चाहिए, और नमाज भी पढ़नी चाहिए और उसके साथ जो है वो जिक्र अजकार करना चाहिए, तस्बीह करनी चाहिए। तो दुश्मनों की जो बातें हैं, इनका जो मजाक है, इनकी जो बेहूदगियां हैं, इनकी जो शकूक व शुबहात हैं, उनका जवाब देने की बजाय, उनसे परेशान होने की बजाय क्या करें, बस आम दिनों से भी बढ़कर खास तौर पर अल्लाह को कसरत से याद करें। और सुबह शाम याद करना और कसरत से याद करना, इसके मानी ये नहीं है कि जैसे बस तस्बीह के दाने गिराए जाते हैं लेकिन दिल जो है वो अल्लाह की याद से जो है वो गाफिल होता है। तो इसके मानी दरअसल हकीकी मानों में अल्लाह को याद करना है। तो इससे क्या बात पता चलती है, अमल का ये उसूल निकलता है कि जब भी आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पर अमल करेंगे, जब भी आप सोसाइटी की रस्मों को तोड़ेंगे, जब भी आप सोसाइटी के अंदर जो बहुत से रवाज पा चुकी हैं बातें, आप उससे उसके खिलाफ चलेंगे, आप कुरान और सुन्नत को जिंदा करेंगे तो लोग बातें करेंगे, लोग ताने देंगे, लोग बेहूदगी करेंगे, मजाक करेंगे। तो फिर उस वक्त आप बहुत परेशान ना हो, फिर उन दिनों में खास तौर पर अल्लाह को याद करें। तो ये जो है वो लोगों का जो प्रोपेगंडे का तूफान है, लोगों का ताने देना, मजाक उड़ाना, तो उन पर सोचने की बजाय, उसका जवाब देने की बजाय क्या करना है, या अय्युहल्लज़ीन आमनु ज़कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा, ए लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह को कसरत से याद करो, वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और सुबह शाम इसकी तस्बीह करते रहो। तो ये आपके लिए भी अमल का उसूल है कि मसलन आपने ये फैसला किया कि अब आप जो हैं वो जिलबाब में आएंगी, और पहले आप नहीं लेती थी तो लोग फिर बातें करेंगे, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, उसको तो जिंदा करना है, करना है आपने सुन्नत को इस सोसाइटी के अंदर। तो आप जैसे आपकी आपके घरों में पहले मखलूत महफिलें थी, अब आपने फैसला किया है कि हम दावत में मर्दों को अलग बिठाएंगे, शादी की महफिल में अलग करूंगी मैं, शादी के मौके पे मैं रस्म और रवाज नहीं करूंगी, या इसी तरह डेथ के मौकों पे बहुत से लोगों ने रस्में बना रखी हैं, आप कहती हैं मैं इसका खात्मा करूंगी, और आप कहती हैं कि हमारी सोसाइटी में या हमारे खानदान में कुछ बेवा औरतें हैं, तलाक याफ्ता हैं, मैं उनके निकाह के लिए कोशिश करूंगी, और फिर लोग बातें करते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो आपको ना उनको इग्नोर करना है, उनकी तरफ तवज्जो भी नहीं देनी, बल्कि अल्लाह का जो हुक्म है उसको सामने रखना है, और अल्लाह के हुक्म پر عمل کرنا ہی دراصل اللہ کا ذکر ہے. تو ذکر ایک قلبی ہوتا ہے, دوسرا قولی ہوتا ہے, اور تیسرا عملی ہوتا ہے. تو ہر طرح سے جو ہے وہ اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو بجا لانا ہے, کوئی کرے یا نہ کرے آپ کو کرنا ہے. اور یہ نہیں کہ کبھی کر لو اور کبھی نہ کرو, اور ایک دن کر لو اور دوسرے دن نہ کرو, اور صبح کر لو اور شام کو نہ کرو. صبح بھی کرنا ہے, شام بھی کرنا ہے, ہر آن کرنا ہے, ہر وقت کرنا ہے. تو یہ ہے اصل بات جو یہاں پہ کہی جا رہی ہے. پھر آیت نمبر جو ہے وہ 43 ہے, 43, هو الذی یصلی علیکم, وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تم پر بہت سے احسانات کیے ہیں, وملائکتہ, اور اس کے فرشتے, اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ بھی تمہارے لیے جو ہے وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. اس کے معنی ہیں کہ اللہ بھی تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے, اور فرشتے بھی تمہارے لیے جو ہے وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا بندہ بن جائے اور شرک کرنا چھوڑ دے, اور اے اللہ تو انسانوں کو جو ہے وہ شرک سے بچا لے, برائیوں سے بچا لے, وقہم السیئات. فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کا جو ہے وہ رحمت بھیجنا اور فرشتوں کا دعائے رحمت کرنا, اس کے کیا معنی ہیں؟ دراصل اس میں جو ہے یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ دراصل اللہ کے تم پر جو ہیں وہ احسانات ہیں, یہ اللہ کی تم پر جو ہے وہ مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا, اور اس رسول کے ذریعے تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی, تمہیں کفر اور جاہلیت کی تاریکیوں سے روشنی میں اللہ نکال کر لایا. یہ ہے اللہ کی رحمت, اور یہ ہے فرشتوں کا تمہارے لیے دعائے رحمت کرنا کہ تم ہدایت پر قائم رہو. تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور اللہ مومنین کے لیے جو ہے وہ بڑا ہی رحیم ہے, بڑا مہربان ہے. تحیاتہم یوم یلقونہ سلام, تحیاتہم ہا یا یا حی جو ہے یہ دعائیہ کلمہ ہے, اور کسی کو زندگی کی دعا دینا. تحیاتہم ان کا تحفہ, ان کی دعا ہوگی. یوم یلقونہ, جس دن ہو اس کو ملیں گے, سلام سلام. اس کے مفسرین نے جو ہے وہ تین معنی بیان کیے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ خود انہیں جو ہے وہ ملاقات کے وقت جب استقبال کرے گا تو انہیں جو ہے وہ سلام کہا جائے گا. آیت 58 سورۃ یاسین اس کی دلیل ہے, سلام قولا من رب الرحیم, کے نیک لوگوں کو جنت میں اللہ کی طرف سے سلام کہا جائے گا. دوسرے معنی ہے کہ فرشتے سلام کریں گے. سورۃ نحل میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں, سورۃ نحل کی آیت 32, الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. تیسرے اس کے معنی ہے کہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے. سورۃ یونس آیت 10, دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. تو جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا, یعنی اللہ کی طرف سے, نمبر دو فرشتوں کی طرف سے, نمبر تین مومنین آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. وعد لہم اجرا کریما, اور اللہ نے ان کے لیے بڑا باعزت اجر جو ہے وہ فراہم کر رکھا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 45 میں فرمایا, یا ایہا النبی, اے نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مخاطب کیا جا رہا ہے. پہلے مسلمانوں کو نصیحت کی, ان کو جو ہے وہ تسلی دی, اور انہیں جو ہے وہ کہا کہ تم اللہ کے کا احسان جو ہے پیغمبر کا آنا, ہدایت کا ملنا, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور اب جو ہے مسلمانوں کو نصیحت کرنے کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کچھ تسلی کے جملے کہے جا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, लोग जो बातें करते हैं इसमें कुछ भी परवाह करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इन्ना अरसलना का शाहिद व मुबशिर व नजीरा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके आपका फरीजा मनसबी बताया है, और अल्लाह ताला ने तीन बातें कही हैं। इनमें पहली बात तो यह है कि हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, शाहिदन, हमने आपको जो है वो शाहिद बनाकर भेजा है, गवाह बना के। इसके तीन मानी हैं कि आप जो है लोगों पर नबी की हैसियत से जो है वो गवाही देंगे, कौली शहादत, अल्लाह का दीन, अल्लाह के दीन को उनके सामने पेश करेंगे, तो कौली गवाही आपको देनी होगी, हलाल बताना होगा, हराम से मना करना होगा, दुनिया के रस्म व रवाज जो है उनके खिलाफ इस्लाम को पेश करना होगा। दूसरे इसके मानी है अमली गवाही, कि अपने अमल से उस चीज का मुजाहरा करना है जो कि इस्लाम चाहता है और उसमें कोई कमी नहीं करनी। तीसरा है आखरत में शहादत, उखरवी गवाही, कि आखरत में जब अल्लाह की अदालत कायम होगी तो उस वक्त आपने गवाही देनी होगी कि जो काम आपके सपुर्द किया गया था आपने उसको बगैर कमी बेशी के लोगों तक जो है वो पहुंचा दिया। तो ये तीन गवाहियां जो हैं यहाँ पे इससे इसके ये मानी हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी मुस्लिम की हदीस भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन अपने बाद सहाबा को देखेंगे कि वो लाए जा रहे हैं मगर वो आपकी तरफ आने के बजाय दूसरे रुख पर जा रहे होंगे या धकेले जा रहे होंगे। हजूर उनको देखकर अर्ज करेंगे कि खुदाया ये तो मेरे सहाबी हैं। इस पर अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बाद उन्होंने क्या करतूत किए। और ये मजमून जो है कई सहाबा से बयान हुआ है, फिर जो है वो उस वक्त जो है वो जब बताया जाएगा कि आपके बाद इन्होंने दीन में तब्दीली कर ली थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे फसोकन 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 कि इन पर जो है पस इन पर लानत हो। तो ये है असल बात कि आपको गवाह बनाकर जो है वो भेजा गया है। अच्छा, बाज लोग जो हैं यहाँ पे शाहिद के मानी समझते हैं हाजिर और नाजिर के, और ये कुरान के मजमून के खिलाफ है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इनके बारे में कुरान जो पेश करता है कुरान जो नुक्ता नजर पेश करता है वो क्या है कि आप हक के गवाह हैं दीन को पेश करने के लिहाज से। कुरान ये नहीं कहता कि आप हाजिर नाजिर हैं, आप हर जगह मौजूद हैं, क्योंकि कुरान की बहुत सी आयतें हैं जिसमें ये बात आई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशर थे, एक इंसान थे आम इंसानों की तरह। सूरत कहफ की आयत नंबर 110 को आप याद कर लें कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मैं तुम्हीं जैसा एक इंसान हूँ इल्ला ये कि मेरे ऊपर वही की जाती है। और दूसरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के तौर पे कहा जा रहा है व मुबशिरन कि आप खुशखबरी देने वाले हैं, और खुशखबरी के मानी है कि जो अच्छे काम करेंगे ईमान लाएंगे अमले सवाले करेंगे तो उन्हें जो है वो जन्नत की खुशखबरी रब की रजा की खुशखबरी। नंबर तीन व नजीरा और डराने वाला बनाकर भेजा गया, और डराने वाला जो है इसके मानी है कि जो गलत काम करेंगे तो उन्हें जो है उनके बुरे अंजाम से डराया जाए कि उन्हें फिर सजा मिलकर रहेगी। तो ये है दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और आपका हैसियत रसूल के आपकी जिम्मेदारी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस बात पे घबराए नहीं कि लोग क्या कहते हैं, आप तो शाहिद हैं, आप तो मुबशिर हैं, आप तो वनजीरा हैं। फिर फरमाया वदाइयन इलल्लाही, फिर इसके बाद जो है यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिद मुबशिर नजीर कह के फिर चौथी बात फरमाई वदाइयन इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, कि अल्लाह ताला ने आपको जो है वो अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा है, यानी आप अल्लाह के हुक्म पर आप उठे हैं। जब या अय्युहल मुद्दसिर या अय्युहल मुज़म्मिल कहा गया तो आप उठ खड़े हुए, तो आप अल्लाह की तरफ दावत देने वाले बनाकर भेजे गए। फिर इसके बाद नंबर पांच हुआ सिराजम मुनीरा और रोशन चिराग बनाकर। तो ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत। और सिराज जो है ये चिराग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उसके यानी आप जो है एक चिराग हैं, और चिराग भी कैसा, रोशन। आप इल्म और हिकमत के नूर से मुनव्वर हैं और लोगों को तारीकियों से निकालकर सिरात मुस्तकीम की तरफ जो है वो रहनुमाई कर रहे हैं। बशीर मोमिनीना, आप मोमिनीन को ईमान लाने वालों को खुशखबरी दे दीजिए, बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है, फदलन कबीरा। तो ये है आपकी जिम्मेदारी कि आप लोगों को, ईमान लाने वालों को बताएं कि आपके लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल कबीर है। और फजल कबीर से मुराद क्या है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो खुशखबरी है, अल्लाह की तरफ से जो रजा मिलने वाली है, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को जो है वो उसकी खुशखबरी दे दीजिए, फदलन कबीरा, के अल्लाह की रजा और अल्लाह की तरफ से जो है वो ईमान पर साबित कदम रहने के नतीजे में जो इनामात मिलने वाले हैं, तो आप लोगों को जो है इसकी इतला दीजिए। वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीना, और आप हरगिज अतात ना करें काफिरों की और मुनाफिकीन की। वदा अजाहुम, और आप इनकी अजियत जो है उसको छोड़ दीजिए, यानी इनकी जो इनका तकलीफ पहुंचाना है उसको आप छोड़ दें, उसकी कोई परवाह ना करें। वतवक्कल अल्लाह, और आप भरोसा कर लीजिए अल्लाह पर, तवक्कुल का रूट है वो काफलाम। वकफा बिल्लाही वकीला, और अपने मामलात जो है वो अल्लाह के सपुर्द कर दीजिए, अल्लाह को अपना वकील बना दीजिए। ये आयत नंबर 48 जो है ये सूरत अहज़ाब की जो बिल्कुल इब्तदाई आयात हैं, एग्जैक्ट वही मजमून जो है यहाँ पर आया है। वहां पहली आयत में अल्लाह ताला ने कहा था या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाहा वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन इन्नल्लाहा काना अलीमन हकीमा, और फिर कहा था दूसरी में वत्तबे मा युहा इलैका मिन रब्बिक इन्नल्लाहा काना बिमा तअमलूना खबीरा, और तीसरी में कहा था वतवक्कल अलल्लाह फकफा बिल्लाही वकीला। तो प्यारी बहनों, ये है पैगंबर का मिशन, और इसी का जो है वो इसी की अतात आपको करनी है, मुझे करनी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात करनी है, अपनी मैं को खत्म करना है, मुसलमान बनना है, और मुनाफिकों की और दूसरों की बातों की परवाह भी नहीं करनी। और याद रखें कि अल्लाह ही ऐसी जात है कि जिसको वकील बनाया जाए, जिस पर भरोसा किया जाए, और जब कोई अल्लाह को अपना वकील बना ले तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था तो उन्होंने कहा था हसबुनल्लाहु निमल वकील व निमल मौला व निमल नसीर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए बदर के मौके पर जब हमला अगले दिन होने वाला था, और आप सारी रात दुआ करते रहे, आप रोते रहे और आप यही दुआ पढ़ रहे थे हसबुनल्लाहु निमल वकील व निमल मौला व निमल नसीर। और आप सूरत फातिहा से लेकर यहाँ तक पहुंची हैं, और ये जो सफर आपने तय किया है, कुरान का सफर और हदायत का सफर और दिलों की रोशनी का सफर, और इसमें आप अपना तजिया करें और आप अपने आप को मजबूत करें और आप अपनी जिंदगी के अहम फैसले करें कि मुझे जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करनी है, किसी की बातों की परवाह नहीं करनी, और मेरा अल्लाह जो है वो मेरी मदद करेगा, और अल्लाह को अपना वकील बनाना है। और अल्लाह पर जब आप तवक्कुल करेंगी, याद रखें कि अल्लाह ही आपके लिए काफी हो जाएगा। अल्लाह उन अनदेखी राहों से आपकी मदद करेगा जो किसी के तसव्वुर में भी नहीं जाती होंगी। अल्लाह की तदबीरें, अल्लाह की चालें जो हैं वो बड़ी कामयाब हैं। लेकिन कमी कहाँ है? दिल के अंदर कमी है, फैसले में कमी है, अल्लाह को वकील बनाने में कमी है। अपनी जिंदगी का छोटा मामला है या बड़ा, छोटी मुश्किल है या बड़ी, सारे सहारों को छोड़कर, सबसे ताल्लुक तोड़कर अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें, फैसला कर लें, और अलल ऐलान अपने आप से ये बात कहा करें कि अल्लाह मैं वही बात कहना चाहती हूँ, मैं वही बात करना चाहती हूँ जिससे तू राजी हो जाए। और याद रखें, जब तक आप अपने आप को अल्लाह का नहीं करेंगी, کوئی چیز آپ کی نہیں ہو سکتی. اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو خدائی اس کی پھر ہو جاتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ جو اللہ کو اپنا بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرے لیے راہیں نہ کھول دوں تو کہنا, تو میری طرف آ کر تو دیکھ, دنیا تیری نہ کر دوں تو کہنا, تو میری طرف چل کر تو دیکھ, بھاگ کر تیری طرف نہ آؤں تو کہنا. ایک قدم تو اٹھائے گا, میں 10 قدم تیری طرف آؤں گا. تو مجھے مانگے گا تو میں دنیا تیری جھولی میں لا کر جو ہے وہ رکھ دوں گا. تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ, تو میرا ہو کر تو دیکھ, تو مجھ سے پیار کر کے تو دیکھ, تو اپنا وجود, اپنا دل, اپنی سوچیں, اپنی خواہشات, اپنے اختیارات میرے سپرد کر کے تو دیکھ, کتنی تجھے یکسوئی ملے گی, کتنا تمہیں سکون ملے گا, کتنا تمہیں پیار ملے گا, تمہارے سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. تو آئیے اپنے آپ کو اللہ کا کر لے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. اس سبق کا یہی نچوڑ ہے. اللہ اپنے پیغمبر سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ میری اطاعت کریں, اور یہی اسلامی حکومت کا, ایک اسلامی سوسائٹی کا, ایک اسلامی ملک کا, ایک انسان جو ہے, یہ ایک اسلامی نظام زندگی جو ہے, یہ اس کی بنیادی شک ہے کہ ایک انسان جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے. اور اگر وہ جھکاتا ہے تو مسلمان ہے, جھکاتا نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. یہ پھر اس کے علاوہ وہ سب کچھ ہے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ, یہ دل جو بہت ہی چھوٹا سا ہے, ایک چھوٹا سا دھڑکنے والا دل جو ہے, اے اللہ اس کی دھڑکنے میں تیرے نام کر دوں. اے اللہ تو مجھے یہ توفیق دے دے, میں اپنی سوچیں تیرے نام کر دوں, میں اپنی باتیں تیرے نام کر دوں, میں اپنے خیالات, اپنے عمل, میں اپنی سانسیں تیرے نام کر دوں, میں وہ کروں بس جس سے تجھے راضی کر دے. اور پھر میں لوگوں سے نہ ڈروں, مجھے کسی کی کوئی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ ہو, تو مجھے بہادر بنا دے. اور جب یہ کردار پیدا ہوتا ہے تو واقعی انسان پہاڑوں سے بھی مضبوط بن جاتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.